कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरवर धारी यशोदानंदन ब्रजगान रंजन यशोदानंदन ब्रजगान रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरवर धारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 रुद्रा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
श्याम कुंड राधा कुंजरी को की जाए गंगा माई की जाए यमुना माई की जाए वृंद देवी तुलसी महारानी की जाए हरिनाम संकीर्तन की जाए समवेत भक्त वृंद की जाए और गौरी सुदर्शन में जाए और गौरी सुदर्शन में जाए हरे और गौरी श्री गुरु एवं गौरव ओम अज्ञातिमरंधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपकदाहनीयं ददाति सपदाम्बिकं वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे प्रथम अध्याय प्रथम अध्याय है श्लोक संख्या 11। अध्याय का शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। आयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म एव विलक्षन्तो भवन्तः सर्वे महि अयमेषु च सर्वेषु यथा भागवः स्थिता भीष्म एव विलक्षन्तो भवन्तः सर्वे महि अयमेषु च सर्वेषु यथा भागमास्थिता भीष्म एव विलक्षन्तो भवन्तः सर्वे महि
गुरुदेव ने सोचा कि हमने योद्धा ये न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है
अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीति के ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उससे बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महान संयोद्धा हैं, किंतु अब वह वृद्ध हो चुके हैं। प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वह किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा लें। ये आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चा पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़िग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म पितामह की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को फंसाया उस समय भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। ये जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वह स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने झूठ पीड़ा के अवसर पर किया था। ओम अज्ञान तिम्रंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल चुके हरे कृष्ण। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य से कई बातें बोल रहे हैं। द्रोणाचार्य समक्ष खड़े हैं, वहाँ भीष्म पितामह भी हैं। तो श्लोक संख्या 3 से ये प्रारंभ हुआ था कि दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य के समक्ष अपनी सेनाओं का वर्णन कर रहे हैं और अभी यहाँ पर भीष्म पितामह की चर्चा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम सबको भीष्म पितामह की रक्षा करनी होगी, क्योंकि भीष्म पितामह वृद्ध हो चुके हैं और हो सकता है कि और जो सैनिक हैं जो पांडव सेना में हैं वो हो सकता है दूसरी दिशा से वार कर दें। जब भीष्म पितामह किसी युद्ध करने होंगे, युद्ध में व्यस्त होंगे, हो सकता है किसी और दिशा से आक्रमण हो जाए, तो इसलिए हम सबको उनकी रक्षा करनी चाहिए। भीष्म पितामह निश्चित रूप से हमेशा विजय, कभी हारे नहीं, विजय में हमेशा उनकी विजय हुई। और तो और देवतागण भी जो हैं उनके बल को मानते थे, उनकी आध्यात्मिक शक्ति को मानते थे। और तो और देवताओं ने उनको नाम दिया भीष्म करके, उनकी भीष्म व्रत को देखते हुए, उनके ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन को देखते हुए कि भीष्म पितामह कितने भोगों के बीच में, ऐश्वर्य के बीच में, इतने बड़े साम्राज्य के बीच में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए शपथ लिए हैं। तो इसलिए देवतागण जो है बड़े प्रभावित हुए और देवतागण ने उनको कहा कि उनको भीष्म व्रत लिया है, उन्हें भीष्म नाम होना चाहिए इनका। तो देव व्रत पहले उनका नाम था और इस तरह से उनका नाम भीष्म पड़ गया, भीष्म पितामह। तो देवतागण जो थे उन्होंने सब पुष्पों की वर्षा की, फूलों की वर्षा की और इस तरह से भीष्म पितामह की जय जयकार हुई। हम जानते हैं, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि भीष्म पितामह महाभागवत हैं और साथ में बहुत बड़े योद्धा भी हैं, लेकिन देवतागण जो है उससे परास्त युद्ध में नहीं हुए हैं। देवतागण परास्त हुए हैं उनकी आध्यात्मिक शक्ति के कारण। उनकी आध्यात्मिक शक्ति के कारण देवता के ऊपर विजय हुई है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही हम लोग इस सृष्टि की बड़ी बड़ी शक्तियों के ऊपर विजय पा सकते, अन्यथा हम अपने आप में इतने सक्षम नहीं हैं कि हम माया का सामना कर सकें और इन देवताओं का सामना कर सकें। ये बताया जाता है कि कई बार देवता कारण भी जो है द्वेषवश उन भक्तों के, जो विरक्त जो भक्त हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी, उनके रास्ते में कई प्रकार की दुविधा डालते हैं। भय रहता है उनको कि सब लोग में ये हमारा पद ना कहीं ले लें। तो इस तरह से देवता कारण भी जो हैं वो चिंतित रहते हैं, वैसे प्रकार उनको चिंता बनी रहती है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि देवतागण जो है भीष्म पितामह से बड़े प्रसन्न हैं और भीष्म पितामह की आध्यात्मिक शक्ति को देखते हुए, उनके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन को देखते हुए देवतावन में बड़े प्रसन्न हुए हैं और देवतावन में उनके ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो इसको विश्व प्रतिज्ञा भी कहा जाता है, जो विश्व पिता ने लिया। तो जब तक कोई सत्य गुण में नहीं आ जाता, तब तक ये कामरूपी जो शत्रु है उस समय हमेशा संघर्ष करना होगा। गीता में भी भगवान बता रहे, कामेश क्रोधेश रजगुण समुद्भवः। तो उद्भव मतलब ये स्थान है, ऊपर होने का स्थान क्या बताया है भगवान ने गीता में, रजोगुण। और कामनाएं प्रकार कई प्रकार की हो सकती है संसार में हमारी, और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम पूरा जीवन बिता देते हैं, लेकिन फिर भी इच्छाएं जो है समाप्त नहीं होती है। इसलिए भक्ति के माध्यम से, कृष्ण भक्ति के माध्यम से हम सबसे पहले सत्गुरु में आने का प्रयास करें। सदा रजस्तमो भावा काम लोभादय से एक चेत अनाविध्वं सत्वं सुदे प्रसिद्ध, भागवत में लिखा है। क्या करने से? नित्यम भागवत सेवा नष्ट प्रायेश अभद्रेश नित्यम भागवत सेवा, भगवती उत्तम श्लोक भक्ति भगवत। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है युद्ध भूमि में, और ना ही विश्व पितामह की तरह हमें प्रतिज्ञा लेनी होगी, ना ही हमें जो है कौरव सेना के साथ युद्ध करना है। हमें तो यहाँ बैठे बैठे ही युद्ध कर लेना है, श्रवण करने मात्र से ही हम अनर्थों के साथ युद्ध कर लेते हैं और अनर्थों का विनाश कर लेते हैं। तो कौरव तो हमारे चेतना में ही बैठे हुए हैं, और उनका वध जो है हम लोग श्रवण कीर्तन के माध्यम से बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो इसके लिए कोई अलग प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सरल विधि है। केवल सुनने मात्र से ही, कृष्ण कथा सुनने मात्र से ही हम समस्त प्रकार के विकारों से छुटकारा पाते हैं, और कौरव होते भी हैं तो पांडव बन जाते हैं, पांडव सेवक बन जाते हैं। तो पांडव तो नहीं लेकिन पांडव सेवक बन जाते हैं, और फिर मंदिर निर्माण में हम लोग पैसा करते हैं। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर भीष्म पितामह की चर्चा हो रही है। तो लेकिन यहाँ पर दुर्योधन जो है भीष्म पितामह को जानते हैं कि भीष्म पितामह सदैव देवताओं के ऊपर भी विजय हुए हैं। उनको लगा है कि दुर्योधन को क्या लग रहा है कि भीष्म पितामह अपनी भौतिक शक्ति के द्वारा देवताओं के ऊपर विजय हुए हैं, और ये क्योंकि भावना चेतना है उनकी। दुर्योधन सोच रहे हैं कि ये युद्ध करने की क्षमता जो है इसका लाभ मैं उठाऊंगा, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, हमें इंद्र शक्ति को पूरा करने के लिए मैं इस भीष्म पितामह का पूरा लाभ उठाऊँ। तो इस तरह से दुर्योधन जो है वो भीष्म पितामह की रक्षा करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ श्लोक के अनुसार तो दिखाई में ऐसा लग रहा है कि क्या दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है कि दुर्योधन वैष्णव सेवा तो नहीं कर रहे हैं, भीष्म पितामह की रक्षा करके, क्योंकि भीष्म पितामह तो महाजन है, महाभागवत है, अब उनकी रक्षा करने का मतलब तो ये वैष्णव सेवा हो गई। नहीं, लेकिन ये वैष्णव सेवा नहीं है, क्योंकि वैष्णव ये तो स्वार्थ को पूरा कर रहे हैं, अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए, इंद्रिय भोग के लिए। यहाँ पर दुर्योधन जो है भीष्म पितामह को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करें, अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, है ना। तो दुर्योधन की ये योजना है, मतलब दुर्योधन इसमें बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि पांडव गणों को या पांडवों को ये राज्य दे दिया जाए धर्म के अनुसार शांति से। भीष्म पितामह की तो यही इच्छा है, भीष्म पितामह की अंतर की इच्छा यही है कि पांडवों को राज्य वापस दे दिया जाए, युद्ध करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन दुर्योधन इस इच्छा को तो पूरा नहीं कर रहे हैं भीष्म पितामह की, वो कौन सी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं भीष्म पितामह को रक्षा प्रदान करके, ताकि उनका अपना स्वार्थ पूरा हो और वो खुद राज्य कर सके और वो खुद जो है फिर हो गए ऐश्वर्य का पूरा लाभ उठा। तो इसलिए जब हम सेवा की बात करते हैं तो सेवा का अर्थ क्या है, सेवा का अर्थ यह है कि उसमें कोई हमारा अपना स्वार्थ नहीं होना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं होना चाहिए, अपनी इंद्रिय तर्पण के लिए नहीं होना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी ने भी संकीर्तन सुंदर में दिया है, क्या दिया है, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल विषाणुजीलनम भक्ति। उत्तम भक्ति क्या है, जिससे ज्ञान और कर्म का आवरण ना हो, और इसका अनुशीलन कैसे होना चाहिए कृष्ण भावना का, अनुकूल अनुकूल का मतलब है फेवरेबल, डिवोशन सर्विस मतलब फेवरेबल, फेवरेबल का मतलब ये होता है कि गुरु की भक्तों की और कृष्ण की इच्छा के अनुसार हमें सेवा करें। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, अगर गुरु पूछे आप पानी लेके आइए तो बदले में आप सोचेंगे मैं दूध लेकर जाऊंगा बादाम मिश्रण डालकर, तो गुरु बड़े खुश होंगे, तो ये गुरु की प्रसन्नता के लिए नहीं है। गुरु की इच्छा के अनुसार अगर हम सेवा करते हैं है ना, और से कोई आशा नहीं करते। गुरु मुखा पदमा वाक्या चीते थे खोरिया ऐखिया आरोना खोरिए मने हाथ, ऐसा हम करते हैं तो उसको शुद्ध भक्ति का, और ऐसा करते रहेंगे तो क्या हो जाते हैं, श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम रति ये प्रसाद है पूरे सर्वा, सारी आशाएं पूरी हो जाए। तो इससे सब कुछ गुरु की इच्छा के लिए कार्य जब करते हैं तो उसमें सारी आशाएं पूरी हो जाती हैं, और आशा क्या होनी चाहिए कि हम कृष्ण भक्ति का आगे, इस आशा से हम भक्ति करते हैं तो शुद्ध और पवित्र मानी जाती है। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए हम शास्त्रों को, वैदिक शास्त्रों को, हरि नाम को, मंत्र को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं, अपने इंद्रिय तर्पण के लिए उपयोग करते हैं, तो उसमें नुकसान ही होता है। जैसे आप बंगाल में जाएंगे, यहाँ तक हमने नवदीप में भी देखा, कहना नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है, कई प्रोफेशनल राइटर होते हैं कितनिया होते हैं, अब देखा होगा बंगाल में उड़ीसा में, और बड़े लंबी लंबी आलापे लेते हैं है ना, तो बहुत लंबी लंबी आलाप लेते हैं, महामंत्र के बीच में बहुत आलाप होता है ना? तो सुनने में बड़ा वो बड़ा अलंकारिक लगता है, लेकिन इससे जो है महापुरुष प्रसन्न नहीं होना। भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर और प्रभुपाद दोनों ने बोला ये बात, क्या बोला कि जितनी बार ये आ कर रहे हैं आलाप का मतलब बीच बीच में आ करते रहते हैं, लंबा खींचते हैं महामंत्र में, इतनी देर में तो आप 50 बार महामंत्र बोल सकते, कितने समय की बर्बादी है। तो कीर्तन वो है, श्रवण वो है, सेवा वो है जिसे गुरु और भगवान प्रसन्न होते हैं। अपने स्वार्थ के लिए हम कुछ भी कर लें, ऑर्केस्ट्रा लिए हैं यहाँ पर कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक गिटार बजाएंगे, रॉक शो हुआ है यहाँ पे जगन्नाथ जी के सामने, लेकिन उसका पूरा लाभ हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें पता करना चाहिए कि गुरु क्या चाहते हैं, प्रभुपाद क्या चाहते हैं, वही वास्तव में श्रवण कीर्तन है शुद्ध रूप में, उसका हमें लाभ मिलेगा, तब हम लोग शुद्ध भक्ति के धरातल पर पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर एक बात बताई जा रही कि जैसे विदेश में क्या हुआ, पाश्चात्य जगत में भी जब प्रभुपाद जी गए वहाँ पर भी कई सही लोगों ने आरोप विरोध किया कि आप इस हरे कृष्ण महामंत्र का जोर जोर से उच्चारण कर रहे हैं, जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं, इससे नुकसान हो रहा है, ये जो भगवान का नाम है इसका उच्चारण नहीं करना चाहिए, जोर से नहीं करना चाहिए, तो बाकी बात उनका ये कहना था कि ये जो भगवान का पवित्र नाम है इसका उच्चारण जोर से नहीं करना चाहिए, और अगर हम गॉड भी बुलाते हैं, जीओडी गॉड भी बुलाते हैं, तो गॉड करके भी नहीं पुकारना चाहिए, हमें कहना ही है तो जीओडी बोल सकते हैं है ना। और उसके बाद फिर कुछ ऐसे भी है कि मतलब कुछ समय के बाद ऐसा भी होगा, प्रभुपाद कहते हैं कि अभी तो जी ओ डी बोल रहे हैं पुकार रहे हैं, बाद में वो बोलेंगे जी हटा दो और डी भी हटा दो, ओ करके पुकारो भगवान को, ओ करके पुकारो, ओ का मतलब जीरो भी हो गया अगर देखा जाए तो, वो जीरो फॉर्म में भी है, तो जीरो का मतलब शून्य है, अंततः आपने भगवान को शून्य का। तो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी आप निकाल सकते हैं। नवदीप में जब शिवास पंडित की, अभी शिवास पंडित का प्रभाव था, तो शिवास पंडित के अगले घर में चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन किया और दिन रात वह संकीर्तन चलता। भाग जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे वो अपने अपने विचार प्रस्तुत करते थे कि ये जो है शिवास अपने घर में संकीर्तन कर रहा है, इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है, कहना लगता है ये लोग अपने उधर भागन के लिए कीर्तन कर रहे हैं, और तो और ये जो चांद काली है ये जो है अपनी सेना भेजेगा दो नावों में और पूरे हमारे गांव उजड़ जाए। हमें पहले ही बताया था कि इसके जो घर को उठा के मैं गंगा जी में डाल रहा हूँ, तो आप लोगों को लगा कि हम लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन देखिए अब वो कह रहा है कितना अनर्थ हो रहा है। तो इस तरह से कई प्रकार की धारणाएं उनकी थी, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं, भगवान अभी मुद्रा में है, विश्राम कर रहे हैं शिव सागर में, और इतना जोर जोर से उच्चारण करके रात्रि को ये उनको जगा रहे हैं कि कितना घोर अपराध है। लेकिन वो समझ ये नहीं समझ पा रहे थे कि भगवान की योग निद्रा हमारी निद्रा के समान नहीं है, क्योंकि तमोगुण में है, भगवान योग निद्रा में भी है तो हमेशा जागे हुए हैं। तो इस तरह से भगवान की गीता में क्या कह रहे हैं, सततम कीर्तन सोमान, सदा मेरा कीर्तन करो, दिन हो या रात हो कीर्तन ये सदा हरी। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि योग निद्रा में है तो उनको जगाया जा रहा है। तो इस प्रकार की कई तरह की धारणाएं हम लोग बना सकते हैं अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, और लेकिन ये भक्ति नहीं जगाती, ये तो शुद्ध भक्ति नहीं कहते हैं। तो इस प्रकार हम सबको बहुत सावधान रहना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है, आत्मान्वेषण बहुत जरूरी है कि क्या शुद्ध भक्ति है क्या शुद्ध भक्ति नहीं है, क्या हम जो कर रहे हैं वो शुद्ध भक्ति है क्या शुद्ध भक्ति नहीं है, क्या हम लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए भक्ति कर रहे हैं या फिर भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे हैं। जैसे कई जो व्यवसायी जो प्रोफेशनल कथावाचक भी होते हैं तो पहले से ही जो है वो शुल्क बता देते हैं, निर्धारित कर लेते हैं कि कितना अभी हमें मिलेगा भागवत कथा के द्वारा। तो ये इस प्रकार जो प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन होते हैं कथा के, इससे कोई लाभ मिलता नहीं है, ये केवल मनोरंजन का कार्य होता है। भागवत का जो लाभ श्लोकों का लाभ उसको मिलेगा लेकिन नुकसान अधिक होगा। क्यों? जैसे हमारे सनातन गोस्वामी बोलते हैं, अवैषम मुखोद कीर्णम पुथम हरि कथा मृतम श्रवण नैव कर्तव्यम सर्प उचित से यथा भया, कि अवैषव के मुख से कभी हरि कथा मत सुनो, हरि कथा भी हो तो अवैषव के मुख से मत सुनो, ऐसा श्रवण करने से क्या होगा, इस तरह सर्प जो है वो दूध को पीता है तो वो दूध जो है जहर बन जाता है, वो दूध नहीं रहता है, देखने में लगता है दूध। इसलिए ऐसे व्यवसायी भागवत कथा वाचक थे, जब हम भागवत सुनते हैं तो वास्तव में वो फिर जहर का कार्य करते, हमारे अनर्थ कटेंगे नहीं, अनर्थ बढ़ जाएंगे। तो भागवत मनोरंजन का साधन नहीं है लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए है, भागवत एक सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करें। परीक्षित महाराज संपूर्ण राज्य त्याग कर सुखदेव गोस्वामी से भागवत कथा सुनने के लिए बैठे गंगा जी के साथ, उनके पास किस चीज की कमी थी बताइए, है कि नहीं? लेकिन वो श्रीमद भागवत को सुनना चाहते हैं, शुद्ध रूप में सुनना चाहते हैं और सुखदेव गोस्वामी जैसे परमहंस से सुनना चाहते हैं। और परीक्षित महाराज ने क्या प्रश्न किया कि जो मरणासन्न व्यक्ति हैं यानी कि जीवन के अंत काल में हैं, उनको किसका ध्यान लगाना चाहिए, किन नामों का जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न किया। तो हम क्या व्यवसायी भागवत कथा वाचक के बाद जाके हम ये प्रश्न करते हैं क्या? वहां तो केवल मनोरंजन का हमारा साधन होता है। और कई मंदिरों में आपने देखा होगा कि पुजारी भी जाए वो व्यवसायी जाते हैं फिर, और जो दान का पैसा है वो भी अपने जेब में डालते हैं, है ना, प्रोफेशनल पुजारी हैं, प्रोफेशनल कथा रिसाइटर्स हैं। तो ये सब जो है नर के रास्ते हैं। इसलिए भक्ति को हम लोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, वहाँ भक्ति देवी निवास नहीं करती है। भक्ति देवी निवास करती है जब निस्वार्थ भावना से हम गुरु को वैष्णव को कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण प्रभुपाद जी ने बनाया है वो इसी उद्देश्य से बनाया है कि हम इस आंदोलन में रहकर शुद्ध भक्ति की स्थापना करें। कहाँ पर? अपने हृदय में, अपने हृदय में। इसलिए हालांकि हम शुरू में जब आते हैं भगवद्गीता के प्रारंभ में बताया गया था, प्रारंभ में जब आते हैं इस आंदोलन में तो हम सब बहुत ही इच्छाएं लेकर ही आते हैं, क्या नहीं? लेकिन धीरे 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 जो है फिर हमारे अंदर करते हैं। तो अगर उद्देश्य भी अगर सही है कि हम जो है शुद्ध बनना चाहते हैं या हम शुद्ध बनना चाहते हैं तो वो भी स्वीकार किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक अस्पताल में या फिर जो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, अगर वो मरीज इलाज करवाने के लिए तैयार होता है तो भले ही कुछ समय के लिए लगेगा वो मरीज है लेकिन उम्मीद रहती है कि बाद में स्वस्थ हो जाए। लेकिन दूसरा मरीज एक और है अस्पताल में, वही भर्ती हुआ लेकिन वो दवाई ले नहीं रहा ना वो डाइट ले रहा है, तो फिर उसकी तो कोई भी आशा नहीं है कि वो ठीक होगा। तो हम सब मरीज निश्चित रूप से हैं लेकिन हम लोग अगर सुधरना चाहते हैं तो हम सबको स्वीकार किया जाएगा प्रभुपाद जी के द्वारा। आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी शवर्दशवा चतुर्विधा वनंत इमाम जना सुकृतिन अर्जुन। चार प्रकार के भगवान बता रहे भगवद गीता में कि मेरे पास आते हैं, धन की तत्व, और फिर जब धन प्राप्त नहीं होता है या धन प्राप्त होने पर भी धन से हताश हो जाते हैं धन कमा कमा के, तो फिर हम जिज्ञासा करते हैं, है कि नहीं? जिज्ञासा करते हैं, मैं कौन हूँ, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, ये सृष्टि क्या है, इस प्रकार की सृष्टि जिज्ञासा शुरू हो जाती है, भगवान कौन है, देवतागण कौन है, इसको कहते हैं जिज्ञासा। और उसके बाद फिर ज्ञानी, ज्ञानी का मतलब तो ज्ञान हो गया है कि कृष्ण ही परम भगवान, ये ज्ञान लगते हुए फिर वो भक्ति का। तो प्रभुपाद कह रहे हैं चारों के चारों शुद्ध भक्त नहीं है लेकिन पुण्य आत्मा है। क्यों पुण्य आत्मा है? क्योंकि ये सब जो है भगवान कृष्ण के पास था। कृष्ण के पास अब कैसे भी आए, भौतिक इच्छा रखे या ना रखे, फिर भी आप भक्ति कर सकते। भागवत बता रहा है अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार भी तीव्रे न भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। भौतिक इच्छा हो या ना हो, मुक्ति की कामना हो, कोई भी कारण हो, लेकिन अगर तीव्रता से भक्ति करते हैं आप तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन अशुद्ध भक्ति को प्राप्त संभव है। हम सबके लिए संभव है, प्रयास की केवल आवश्यकता है। हमारी दिशा सही होनी चाहिए, हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए, हमारा संग सही होना चाहिए, हमारा श्रवण कीर्तन सही होना चाहिए, प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। प्रभुपाद से पूछा एक बार, प्रभुपाद आर यू लिबरेटेड? प्रभुपाद ने कहा नो। प्रभुपाद से पूछा क्या आप मुक्त हैं? प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैं मुक्त नहीं हूँ। लेकिन फिर प्रभुपाद ने बोला लेकिन मैं उस व्यक्ति को फॉलो कर रहा हूँ जो मुक्त है, यानी अपने गुरु महाराज की बात कर रहे थे कि मैं अपने गुरु महाराज को फॉलो करता हूँ ऐसे दिन जो कि मुक्त है। प्रभुपाद ने कहा देयरफॉर आई एम लिबरेटेड, तो इस दृष्टि से मैं मुक्त हूँ क्योंकि मैं अपने गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार सेवा कर रहा हूँ, तो इस कारण से मुक्त। तो कहने का क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि अभी हम मुक्त ना हो पूर्ण रूप से, लेकिन अगर हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो गुरु के द्वारा दिया गया, वैष्णों के द्वारा दिया गया, परंपरा के द्वारा दिया गया है, तो उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो हम लोग मुक्त अवस्था में होते हैं। भगवद गीता में भगवान भी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? मांसो के विचारे न भक्ति योगे न सेवते सगुणा समतीते एतान धर्म भूयाय कल्पते। तो अविचार अव्यभिचारणी भक्ति क्या है? जो किसी अवस्था में कुछ चुत नहीं होता है, हमेशा भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में लगा रहता है, प्रोसेस को फॉलो करता है, तो वो व्यक्ति जो है वो गुणों को पार करता है, प्रकृति के तीन गुणों को पार करता है। आसान नहीं है लेकिन प्रयास तो किया जा सकता है। तो जितना फॉलो करेंगे उतना मुक्त अवस्था में, जितना ही फॉलो करेंगे उतना मुक्त अवस्था में। तो ऐसा प्रोसेस को फॉलो करते 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 क्या होगा, हम लोग शुद्ध भक्त के लेवल में पहुंचते हैं। ये इसका प्रोसेस का ये फायदा होता है, प्रोसेस को फॉलो करने का लाभ ये होता है कि उस प्रोसेस के साइकिल में हम रहते हैं, लगे रहते हैं, तो एक ना एक दिन हम लोग शुद्ध भक्ति के धरातल पर पहुंच जाते हैं, शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो ये आंदोलन बड़ा ही सुलभ है, बहुत ही प्रभुपाद जी ने एक विशेष आंदोलन हम सबको दिया है, और हम लोग जो है इस आंदोलन में इसी भावना का है, दुर्योधन की तरह नहीं, दुर्योधन तो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए जो है वो युद्ध करना चाह रहा है, नहीं, देखिए युद्ध तो दोनों ही कर रहे हैं, पांडव लोग भी युद्ध करने की तैयार हो गए हैं, कौरव भी युद्ध कर रहे हैं, लेकिन दोनों में कितना भेद देख, एक युद्ध कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता और दूसरे युद्ध कर रहे हैं केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, उसके लिए कितनी सारी योजनाएं बना रहे हैं, कितनी सारी व्यवस्था कर रहे हैं। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे महारथी और महाजन और माँ भागवत जैसे भी जो लोग हैं उनके साथ हैं, लेकिन फिर भी उनकी हार निश्चित, इसका कारण क्या है? भीष्म पितामह महाजन है, भीष्म पितामह माँ भागवत है, फिर भी वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे हैं। तो ये सब भगवान की योजना है, भगवान के द्वारा रचित लीला है, हम सबको शिक्षा देने के लिए कि भक्त की पहचान या व्यक्ति की पहचान संगति से होती है। तो हम जैसे संग में रहेंगे उस संग का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो भीष्मतामा जब बाणों की छैया में लेटे हुए थे तो द्रौपदी जी ने आगे प्रश्न किया था। उन्होंने कहा कि आप तो अभी धर्म उपदेश दे रहे हैं इन पांडवों को कौरवों को भगवान के कहने पर, जब मेरा अपमान हो रहा था, वस्त्र हरण हो रहा था हरी सभा में, आप लोगों ने कुछ नहीं कहा, आप चुप रहे, इसका कारण क्या है? अभी आप धर्म उपदेश दे रहे हैं, यही धर्म उपदेश आप सभा में कह सकते थे, आप करते आप बोलते तो ये सब नहीं होता, ये युद्ध ही नहीं होता फिर। तो भीष्मतामा ने कहा कि जानने के बोला भीष्मतामा, भीष्मतामा ने कहा कि उस समय मैं कौरवों का अन्न खाना था, आज वो सारा अन्न निकल गया खून के रूप में, अब देख लो सारा खून बह रहा है, वो अन्न सारा निकल गया है, इसलिए अब मैं पूरी पवित्रता से बोल। तो इसलिए देखिए ये सब शिक्षा प्रद कथाएं हैं महाभारत हम सब की शिक्षा के लिए है कि बड़ा सावधान रहना चाहिए हमें, विषय लोगों का संग त्यागना चाहिए हमें, भक्तों के समाज में रहना चाहिए, भक्तों के समाज में सारी व्यवस्था है, यहां भी भक्तों का समाज में भक्तों का परिवार है, ये है असली परिवार, यहां पे सभी भक्तों का उद्देश्य एक ही उद्देश्य है कि कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए, अपने स्वार्थ को त्याग कर निस्वार्थ भावना से जो है कैसे गुरु को भगवान को प्रसन्न किया जाए, इसकी शिक्षा हम लोग प्राप्त करते हैं यहाँ पर। तो इस सब को हमें अपने जीवन में इसको ध्यान देना, तो ये बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि हम लोग भटक जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग सही उद्देश्य से आते हैं इस आंदोलन में, लेकिन बाद में हम फिर से मार्ग से भटक जाते हैं। क्यों भटक जाते हैं? क्योंकि माया बहुत प्रबल है, माया बहुत प्रभावशाली है, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। रंग के मात्र भी अगर हमने गलती की तो फिर हमें माया में ठीक नहीं हुआ, फिर हम वैसा समाज से भक्तों के समाज से फिर से दूर हो जाए। तो भक्तों के समाज में रहकर भक्तों का जो है हमें मूल्य समझना चाहिए, वैल्यू समझना चाहिए डिवोटी एसोसिएशन, ये बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, जैसे बोलते हैं अंग्रेजी में कहावत है फेमिलैरिटी ब्रीड्स कंटेंट, है कि नहीं? किसी व्यक्ति के साथ आप बहुत मिलजुल रहे हैं और आपका मित्र भी हो गया है, उस मित्रता में क्या होता है कि कई बार क्या है हम भूल जाते हैं उस व्यक्ति का महत्व ही भूल जाते हैं कई बार, है कि नहीं? घर में रहने वाले लोगों को शायद हो सकता है मिलते ही नहीं कई बार, और वृद्ध लोगों से तो इतनी जान पहचान हो जाती है कि उनको मिलते ही नहीं, बातचीत नहीं करते, उनसे दूर भागते हैं। तो वो तो एक्सट्रीम मतलब लिमिट है, मतलब सारी सीमाएं पार कर चुके हम लोग कंटेंप्ट का। तो कहने का अर्थ ये है कि भक्तों के समाज में रहकर हम भक्तों को वैल्यू नहीं करते हैं, अगर भक्तों के महत्व को नहीं समझते हैं तो फिर जो है माया अपना महत्व समझाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और ऐसे भक्तों के संग रहे जहाँ हमारा उद्देश्य स्पष्ट बना रहे, मार्गदर्शन सही मिले हमें कि हमें सही दिशा मिल रही है, हम उसी स्थान में जाना चाह रहे हैं जिसके लिए हम आए थे, यहाँ पर भटक न जाए, दुर्योधन के रास्ते को भी ना पा। तो दुर्योधन का रास्ता बड़ा खतरनाक रास्ता है, दुर्योधन तो वो क्या था, कली का होता है, कली का होता है, वो जानता था कि भीष्मतामा का विशेष स्नेह है पांडवों से, जानता था भीष्मतामा का बड़ा विशेष स्नेह है पांडवों से, लेकिन वो ये भी जानता था कि जहाँ सभा में युद्ध क्रीड़ा जब हुई थी तो वहाँ भीष्मतामा चुप रहे थे और जिस तरह से उन्होंने वहाँ त्यागा था इसी तरह से यहाँ पर युद्ध करते हुए पांडवों के प्रति जो स्नेह है उसको भी जागेंगे भीष्मतामा, ऐसी उम्मीद द्रौपदी का तरह दे रहे हैं, ऐसी उम्मीद दुर्योधन कर रहा है भीष्मतामा कि भीष्मतामा से आशा ऐसे कर रहा है कि जैसा उन्होंने सभा में किया था उसी तरह का आचरण यहाँ पे करें, यानी कि धर्म का ही साथ देंगे, धर्म का साथ नहीं देंगे, ऐसी आशंका। दूसरा प्रश्न ये आया था कि भीष्मतामा जो है समझिए जैसे दुर्योधन ने नारायणी सेना ले ली, नारायणी सेना दुर्योधन ने ले ली तो वो नारायणी सेना क्या कर रही थी, वो तो भगवान की सेना है। लेकिन याद रहे अगर अभक्त जो है भगवान की शक्ति को हरता है तो फिर वो नारायणी सेना नहीं है, वो मायावी सेना है या माया की सेना है, वो ही नारायणी सेना जो है फिर माया के घर रूप में कार्य करती है। जैसे सीता जी को रावण ले गए तो फिर वो क्या बताया गया, वो मूल सीता नहीं थी, वो छाया सीता थी। ये मूल सीता को तो रावण कभी छू नहीं सकता है। तो इसलिए जब हम लोग लक्ष्मी का दुरुपयोग करते हैं तो वही लक्ष्मी जो है माया का कार्य। इसलिए मंदिर में, धार्मिक स्थानों में ये बहुत जरूरी है कि प्रत्येक जो सुविधा मिली हमें मंदिर के प्रांगण में या भगवान की सेवा में, कुछ भी हमें मिल रहा है उसका हमें कभी दुरुपयोग नहीं करना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि यहां पर तो हो सकता है कि रिएक्शन दिखाई ना पड़े भारी रूप में, लेकिन स्पिरिचुअल रिएक्शन जरूर मिलता है, फिर हम भक्ति से बहुत दूर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम लोग मंदिर का मतलब जाने। मंदिर वो स्थान होता है जहां पे सारे कार्य, सारी सेवाएं भगवान की प्रसन्नता के लिए आती, तो साधु मंदिर गए, नहीं तो फिर मंदिर और बाकी और स्थानों में कोई अंतर नहीं रहेगा, भेद नहीं रहेगा। तो एक एक चीज का हमें यहां पर सदुपयोग करना, एक एक वस्तु का हमें सदुपयोग करना है। हमें देखना है कोई भी वस्तु जो है वो दुरुपयोग नहीं। प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे तो वहां पर क्या हुआ, प्रभुपाद जी एक बार किचन में चले, किचन में जाकर देखा वहां सब्जियां रखी हुई थी बहुत पुरानी सड़ी हुई, और उसी को वो बना के कुछ कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने देख लिया किचन में जाके, प्रभुपाद ने पूछा ये क्या है, ये सब्जियां तो सड़ी हुई हैं, खराब है। तो उन्होंने कहा कि देखा नहीं। प्रभुपाद ने कहा मैं पिछले सिर्फ 8 घंटे से यहाँ हूँ, मैंने देख लिया, और आप लोग यहीं पे रहते हो, आप लोगों ने नहीं देखा। तो इस प्रकार प्रभुपाद जो है सचेत करते थे कि कैसे हम लोगों को बहुत सतर्क रहना है भगवान की सेवा में, है ना। प्रभुपाद जी जब आए तो किसी ने पूछा कि प्रभुपाद कैसा है सब अरेंजमेंट यहाँ पर, एवरीथिंग इज फर्स्ट क्लास। प्रभुपाद ने ऊपर जो है झुमरू में दिखाया उन्हें सैंडल में, प्रभुपाद ने कहा व्हाट इज दिस, ये घोंसला क्या कर रहा है। प्रभुपाद जी बहुत ज्यादा सतर्क थे एक एक चीज के लिए। एक शिष्य है प्रभुपाद जी को भेज रहे थे वृंदावन धाम किसी कार्य से सेवा के लिए, तो प्रभुपाद से उन धनराशि मांग रहे थे। प्रभुपाद ने कहा मैं ऐसे जाऊँगा, मैं ऐसे जाऊँगा, तो वहाँ जाकर मैं सूचना दूंगा। प्रभुपाद ने कहा ऐसा करो एक चिट्ठी भेज दो, तुम्हें इतने खर्चा करने की जरूरत नहीं। प्रभुपाद इतने ज़्यादा मतलब सतर्क थे। प्रभुपाद जी अपने डायरी में जल्दू डायरी आप देखेंगे तो प्रभुपाद अमेरिका जाते लिख रहे थे, पर्सनल डायरी प्रभुपाद की जो है उसमें डेली का हिसाब लिखते थे प्रभुपाद कि इतना मेरा खर्चा हुआ है, यहाँ यहाँ खर्चा हुआ है, सारा हिसाब लिखा हुआ है प्रभुपाद। एक एक पैसे का हिसाब प्रभुपाद रखते थे, इतने कॉन्शियस थे प्रभुपाद लक्ष्य के मामले। तो इसलिए हम लोगों को भी बड़ा सावधान रहना चाहिए कि प्रभुपाद हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि जो धन है, ये संपत्ति है, ये ऊर्जा है, इस सब का किसी का भी दुरुपयोग ना करें। और ये किसी एक का कार्य नहीं है, ये हम सब का कार्य है। तब तो हमारा मंदिर आना पूरा सार्थक होगा कि मंदिर आकर हम सचेत हो जाएं कि हम सब जो भी कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम खूब श्रवण कीर्तन करें, खूब भक्ति करें, और कोई ऐसा कार्य ना हो जिसके द्वारा क्या होगा, हम भक्ति से फिर भटक जाएंगे। ये बहुत बहुत जरूरी है हम सबके लिए। तो इस बात का हम सब एक ध्यान रखें कि जो भी हम करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, और ऐसा हम करेंगे तो हम निश्चित रूप से भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे, और फिर मनुष्य जीवन हमारा सफल होगा, और फिर पांडवों की सेना में रहकर जो है हम युद्ध कर पाएंगे महाराज। हरे कृष्ण। हम लंबा नहीं रहे क्लास, हम थोड़ा कीर्तन करना चाहते हैं। प्रभु जी पिछले 3 हफ्तों से प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना को ठुकरा रहे थे, इसके लिए मैं समझ आता हूँ। तो अब हम सोच रहे हैं कि आप थोड़ा जल्दी रोक के हम थोड़ा कीर्तन ज़्यादा करेंगे। तो कीर्तन का होता ही नहीं है तो अच्छा नहीं है, कीर्तन तो अधिक से अधिक होने चाहिए। हम गिरधारी लाल प्रभु जी हमारे बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत विशाल विराट भक्त हैं हमारे, बहुत मधुर संकीर्तन करते हैं और खुद गाते बहुत अच्छा है प्रभु जी, बहुत मधुर आवाज़ उनकी और बहुत सुंदर बजाते हैं मृदंग। मृदंग इन्होंने खुद ही सीख लिया मंदिर में आके, इनको किसी ने नहीं सिखाया। मृदंग खुद सीख लिया, हारमोनियम खुद सीख लिया, तो ये नेचुरल टैलेंट है। तो ये तो भगवान की कृपा से होता है। हमने देखा है अभी इस आंदोलन में, अगर आप देखें बाहर कोई मृदंग सीखने जाता है किसी म्यूजिक स्कूल में, ये जो मृदंग सीखना बहुत कठिन काम है, क्योंकि हम लोग जब कॉलेज के ज़माने में तो हम लोगों ने म्यूजिक स्कूल में ज्वाइन किया था वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या है कि कोई तबला सीखने आता था तो उसको तो एक दो महीना जो है एक ही ताल में बिठा रखेंगे, ऐसे ऐसे करते रहो पूरे एक महीने, वो बजाता बजाता फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा ये कहाँ फंस गया। बहुत मुश्किल कार है मृदंग वगैरह सीखने के लिए, 8-8 साल लग जाते हैं, तबला सीखने में 7-8 साल लग जाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की इतनी बड़ी कृपा है कि यह भक्ति और सत्य और कृपा हो जाए, इस आंदोलन में आपके कुछ ही महीनों में कुछ ही दिनों में मृदंग बजाना शुरू कर, मृदंग ढालना शुरू कर। ये सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहता हूँ, नित्यानंद प्रभु की बड़ी कृपा है। तो हम लोग थोड़ा सीखने जाएंगे, ठीक है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। एक कंडीशन है, कंडीशन होना चाहिए भक्ति में तो, लेकिन यहाँ हम कंडीशन से डाल रहे हैं ताकि कीर्तन अच्छा हो। आप सबसे प्रारंभ है आप सबको पीछे बोलना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। संकीर्तन का अर्थ होता है, संकीर्तन में दो चीजें जरूरी होती है, एक तो सबको मिलकर बोलना होता है और नृत्य करना जरूरी होता है। अभी तो खैर बैठे हुए हैं लेकिन मैं तो बता रहा हूँ संकीर्तन का असली अर्थ यह है, तब पूरा लाभ मिलता है। इसलिए आप सब भक्त जो बैठे हैं कोरस में गाएंगे जब तो आवाज़ ही निकलनी चाहिए जब मुंह खोले। कई बार कोरस में होता क्या है कि मुंह खुल जाता है लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आती। तो आप सबसे प्रार्थना है भक्तों से कि आप सब खूब जोर से उच्चारण करें ताकि हमें भी अच्छा लगेगा, आप सबको अच्छा लगेगा।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। Yeah. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
भक्ति विदान स्वामी शूल प्रभुपाद की जय अनंत गौरी और ग्लोरी सुदर्शन और ग्लोरी सुदर्शन श्री गुरु है गौरा जगन्नाथ नंद सुभद्रा महारानी की
फोन पर